नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, पावर एंड प्रोग्रेस, डैरन एसएमओब्लू और उनके सहलेखक साइमन जॉनसन की अर्थशास्त्र, इतिहास और प्रौद्योगिकी नीति पर केंद्रित पुस्तक है। इसका मूल प्रश्न सीधा है, क्या नई तकनीक अपने आप समाज के अधिकांश लोगों को समृद्ध बनाती है? लेखकों का उत्तर है, नहीं। वे लगभग 1000 वर्षों के उदाहरणों के सहारे दिखाते हैं कि तकनीकी बदलाव से पैदा हुई संपदा का वितरण राजनीतिक संस्थाओं, श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति और प्रभावशाली समूहों के निर्णयों पर निर्भर करता है। पुस्तक मध्यकालीन कृषि, औद्योगिक क्रांति और डिजिटल युग को एक ही विश्लेषणात्मक ढांचे में रखती है। इसका लक्ष्य तकनीक विरोध नहीं बल्कि तकनीकी नियतिवाद का खंडन है, विशेषकर AI स्वचालन। व्यापक डेटा संग्रह और निगरानी के दौर में लेखक पूछते हैं कि नवाचार किस समस्या को हल करे, किसके नियंत्रण में हो और उसके लाभ किसे मिले। यह पुस्तक साझा समृद्धि को तकनीक का स्वतः परिणाम नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संघर्ष और सार्वजनिक विकल्पों से निर्मित परिणाम मानती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, तकनीकी प्रगति और साझा समृद्धि के बीच कोई स्वचालित संबंध नहीं। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण तर्क तथाकथित उत्पादकता बैंडवैगन के विरुद्ध है। प्रचलित धारणा कहती है कि यदि मशीनें, सॉफ्टवेयर या उत्पादन विधियां अधिक कुशल हो जाएं, तो अंततः सभी की आय और जीवन स्तर बेहतर होंगे। एसएमओग्लू और जॉनसन मानते हैं कि उत्पादकता उपयोगी है, लेकिन उसके लाभ अपने आप मजदूरी, सुरक्षित रोजगार या सामाजिक कल्याण में नहीं बदलते। तकनीक से उत्पादन बढ़ सकता है, जबकि लाभांश, संपत्ति और निर्णयाधिकार सीमित वर्गों में केंद्रित रह सकते हैं। इसलिए कुल आर्थिक वृद्धि और व्यापक समृद्धि अलग प्रश्न है। लेखक मध्यकालीन यूरोप की कृषि प्रगति और इंग्लैंड के आरंभिक औद्योगीकरण का उपयोग इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए करते हैं। कृषि से उत्पन्न अतिरिक्त संपदा लंबे समय तक अभिजात वर्ग के नियंत्रण में रही, जबकि अनेक किसानों की स्थिति असुरक्षित बनी रही। इसी तरह औद्योगीकरण के शुरुआती लंबे दौर में कामगारों की आय और कामकाजी परिस्थितियां तुरंत नहीं सुधरी। इन उदाहरणों का अर्थ यह नहीं कि तकनीक हानिकारक है, अर्थ यह है कि वितरण की व्यवस्था, श्रम कानून, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक संघर्ष तय करते हैं कि दक्षता का लाभ किसे मिलेगा। पुस्तक पाठक को यह जांचने का उपकरण देती है कि किसी नई तकनीक को केवल उसकी क्षमता से नहीं, उसके स्वामित्व, उपयोग और लाभ वितरण से भी परखा जाए। दूसरा, तकनीक की दिशा पर शक्ति, संस्थाएं और व्यावसायिक हित प्रभाव डालते हैं। पुस्तक तकनीक को किसी बाहरी और अपरिवर्तनीय शक्ति की तरह देखने से इनकार करती है। किसी भी समय कई संभावित तकनीकी रास्ते मौजूद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, नवाचार का उपयोग कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने, नए कार्य बनाने और निर्णयों में सहायता देने के लिए किया जा सकता है। वहीं नवाचार निगरानी बढ़ाने, कार्य को छोटे नियंत्रित हिस्सों में बांटने या लोगों को हटाने के लिए भी लगाया जा सकता है। कौन सा रास्ता चुना जाएगा, यह केवल इंजीनियरिंग की श्रेष्ठता से तय नहीं होता। कंपनियों के प्रोत्साहन, निवेशकों की प्राथमिकताएं, राज्य की नीतियां और श्रमिकों की सामूहिक शक्ति इसमें निर्णायक होती है। एसएमओग्लू और जॉनसन के अनुसार, शक्तिशाली समूह अक्सर ऐसी तकनीकी दिशा को स्वाभाविक या अनिवार्य बताने लगते हैं जिससे उनका नियंत्रण मजबूत हो। यह विचारधारा सार्वजनिक बहस को सीमित करती है, क्योंकि प्रश्न यह नहीं रह जाता कि बेहतर विकल्प क्या है, बल्कि केवल यह बचता है कि बदलाव को कितनी जल्दी स्वीकार किया जाए। पुस्तक इस सोच को चुनौती देती है। वह बताती है कि पेटेंट व्यवस्था, कर नीति, प्रतिस्पर्धा नियम, श्रम संस्थाएं और डेटा नियम जैसे ढांचे नवाचार के संकेतों को बदल सकते हैं। इस दृष्टि में तकनीकी नीति केवल बाद में नुकसान की भरपाई नहीं है, वह आरंभ से यह तय करने का माध्यम है कि शोध और निवेश किन उद्देश्यों की ओर बढ़ेंगे। यही पुस्तक का शक्ति और प्रगति के बीच केंद्रीय संबंध है। तीसरा, औद्योगिक क्रांति का सबक, समृद्धि के लिए श्रमिक शक्ति और नए कार्य जरूरी है। पुस्तक औद्योगिक क्रांति को सरल विजय कथा की तरह प्रस्तुत नहीं करती। लेखक स्वीकार करते हैं कि इस परिवर्तन ने दीर्घ अवधि में उत्पादन और जीवन की भौतिक सुविधाओं को बहुत बढ़ाया, फिर भी शुरुआती चरणों में उसके लाभ व्यापक रूप से साझा नहीं हुए। कामगारों के लिए आय, कार्य घंटे, सुरक्षा और सामाजिक सम्मान के प्रश्न लंबे समय तक संघर्षपूर्ण रहे। इसलिए इतिहास का सबक यह नहीं कि धैर्य रखें और बाजार अंततः सब ठीक कर देगा। सबक यह है कि साझा समृद्धि के लिए संगठित श्रम, राजनीतिक सुधार और ऐसी तकनीकी दिशा की जरूरत होती है जो मनुष्यों के लिए उपयोगी कार्य पैदा करे। लेखक विशेष रूप से नए कार्यों के निर्माण पर जोर देते हैं। यदि तकनीक केवल मौजूदा काम को मशीन से बदलती है, तो उत्पादकता बढ़ने पर भी रोजगार और आय पर दबाव पड़ सकता है। इसके विपरीत, जब तक नीत लोगों की विशेषज्ञता, देखभाल, समस्या समाधान और सहयोग को पूरक बनाती है, तब नए पेशे और बेहतर कार्य भूमिकाएं उभर सकती है। यह अंतर केवल श्रम बाजार की बात की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि डिजाइन और निवेश का प्रश्न है। मजदूरों की सौदेबाजी शक्ति वेतन वितरण के साथ तकनीकी विकल्पों को भी प्रभावित कर सकती है। पुस्तक के लिए श्रमिक शक्ति अतीत की औद्योगिक कहानी भर नहीं, वर्तमान डिजिटल अर्थव्यवस्था में तकनीक को मानवीय जरूरतों के अनुरूप मोड़ने की शर्त है। चौथा, डिजिटल तकनीक और AI में स्वचालन, डेटा संग्रह और निगरानी के जोखिम। लेखक समकालीन डिजिटल अर्थव्यवस्था को पुस्तक की ऐतिहासिक दलील की परीक्षा भूमि मानते हैं। उनका मुख्य सरोकार AI का अस्तित्व नहीं, बल्कि उसका वर्तमान प्रमुख उपयोग है, जब कंपनियां AI को मुख्यतः लागत घटाने, कर्मचारियों को बदलने, व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने और व्यापक डेटा इकट्ठा करने के साधन के रूप में अपनाती हैं, तो तकनीक शक्ति के केंद्रीकरण को बढ़ा सकती है। कार्यस्थल पर एल्गोरिथमिक निगरानी कर्मचारियों की स्वायत्तता घटा सकती है। व्यापक डेटा संग्रह व्यक्तियों को केवल उपभोक्ता या मापे जाने वाले संकेतों में बदलने का जोखिम पैदा करता है। ऐसी व्यवस्था लोकतांत्रिक विमर्श पर भी असर डाल सकती है। पुस्तक किसी काल्पनिक AI विनाश की बजाय अधिक निकट और संस्थागत खतरे पर ध्यान देती है। यदि स्वचालन को सफलता का एकमात्र पैमाना मान लिया जाए, तो उपयोगी मानव कौशलों को मजबूत करने वाले विकल्पों में निवेश कम हो सकता है। लेखक इसीलिए पूछते हैं कि AI डॉक्टरों, शिक्षकों, तकनीशियनों और अन्य कामगारों को बेहतर निर्णय, अधिक समय और अधिक क्षमता कैसे दे सकती है, न कि केवल उन्हें नियंत्रित या प्रतिस्थापित कैसे कर सकती है। इस प्रश्न के लिए डेटा पर जवाबदेही, प्रतिस्पर्धा, श्रम की आवाज और लोकतांत्रिक निगरानी आवश्यक है। पुस्तक का संदेश यह है कि डिजिटल प्रणालियों की दिशा अभी तय नहीं हुई है, उनके सामाजिक परिणाम डिजाइन, नियमों और शक्ति संतुलन से बनेंगे। अंत में, तकनीक को मोड़ने का कार्यक्रम लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ नवाचार की पुनर्रचना। पुस्तक की रचनात्मक स्थिति यह है कि हानिकारक नवाचारों पर केवल रोक लगाने का प्रश्न पर्याप्त नहीं है। लेखक तकनीकी परिवर्तन को रोकने के बजाय उसकी दिशा बदलने की बात करते हैं। उनका मानना है कि समाज को ऐसे नवाचार चाहिए जो उत्पादकता के साथ मानवीय क्षमता, अच्छे कार्य और सार्वजनिक हित को बढ़ाए। इसके लिए नीति का लक्ष्य केवल प्रभावित लोगों को बाद में मुआवजा देना नहीं होना चाहिए। शोध, निवेश और बाजार प्रोत्साहनों को पहले ही इस तरह ढालना होगा कि अत्यधिक स्वचालन और निगरानी ही सबसे लाभकारी विकल्प न बने। इस ढांचे में लोकतांत्रिक संस्थाओं की दो भूमिकाएं हैं। पहली, वे शक्तिशाली कंपनियों और तकनीकी नेताओं के एकतरफा निर्णयों पर सीमा लगाती है। दूसरी, वे श्रमिकों, नागरिकों और विविध विशेषज्ञों को तकनीकी प्राथमिकताओं पर आवाज देती है। श्रम अधिकार, प्रतिस्पर्धा नीति, डेटा संबंधी नियम और सार्वजनिक जवाबदेही इस व्यापक दिशा के हिस्से हैं। पुस्तक कोई एक जादुई नीति नुस्खा नहीं देती, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में समाधान अलग होंगे, लेकिन वह मूल्यांकन का स्पष्ट मानदंड देती है। किसी तकनीक को इस आधार पर परखना चाहिए कि क्या वह लोगों की उत्पादक भागीदारी बढ़ाती है, शक्ति को अत्यधिक केंद्रित करती है या नहीं, और लोकतांत्रिक नियंत्रण के अनुकूल है या नहीं। इस प्रकार प्रगति को नई मशीनों की संख्या नहीं, व्यापक सामाजिक लाभ की गुणवत्ता से मापा जाता है। निष्कर्ष में, पावर एंड प्रोग्रेस उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो AI, स्वचालन, असमानता, श्रम और लोकतंत्र के संबंध को केवल भविष्यवाणी या तकनीकी उत्साह के माध्यम से नहीं समझना चाहते। अर्थशास्त्र, सार्वजनिक नीति, इतिहास, प्रबंधन और तकनीक से जुड़े विद्यार्थी तथा पेशेवर इसमें एक उपयोगी वैचारिक ढांचा पाएंगे। यह उन लोगों के लिए भी प्रासंगिक है जो यह मानते हैं कि नई तकनीक के लाभों पर बहस केवल दक्षता और आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं रह सकती। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि वह पाठक को बेहतर प्रश्न पूछना सिखाती है। किस समस्या के लिए तकनीक बनाई जा रही है? क्या वह लोगों की क्षमता बढ़ाती है या केवल उन्हें प्रतिस्थापित और नियंत्रित करती है? लाभ, डेटा और निर्णयाधिकार किसके पास केंद्रित हो रहे हैं? इन प्रश्नों के आधार पर पाठक AI और डिजिटल बदलावों के दावों का अधिक सावधानी से मूल्यांकन कर सकता है। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान, इसका लंबा ऐतिहासिक दायरा और राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जोर है। यह न तो तकनीक को अनिवार्य मुक्तिदाता मानती है, न उसे अपने आप विनाशकारी बताती है। इसके बजाय SMOGLU और जॉनसन दिखाते हैं कि तकनीकी दिशा सामाजिक संघर्ष, संस्थाओं और लोकतांत्रिक विकल्पों से बनती है। यही संतुलन इसे तकनीक और असमानता पर लिखी सामान्य चेतावनीपूर्ण पुस्तकों से अधिक विशिष्ट बनाता है। हालांकि जिन पाठकों को विस्तृत ऐतिहासिक सर्वेक्षण पहले से परिचित लगे, उन्हें इसके निष्कर्ष अधिक परिचित लग सकते हैं। फिर भी वर्तमान AI बहस के लिए इसका मूल प्रश्न अत्यंत उपयोगी है। प्रगति किसके लिए और किसके नियंत्रण में? यदि आप समर्थन करना चाहते हैं दारुना से मुग्यू, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।